वेद शिवांशा को लेकर यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था। जब वेद शिवांशा को लेने यूनिवर्सिटी पहुंचा था, तब उसकी क्लासमेट जीवा मित्तल, जो कि किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, वो शिवांशा की दोस्त होने का दावा कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही शिवांशा ने वेद को साफ कर दिया था कि वो लड़की उसकी दोस्त नहीं है। शिवांशा का उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि वो उस लड़की को खुलकर कुछ नहीं कह पाई होगी। यहाँ तक कि उसने वेद के सामने खुद को शिवांशा की दोस्त के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, तब भी शिवांशा चुप रही थी। वेद ने शिवांशा को ज्यादा कुछ नहीं कहा और गाड़ी का यू टर्न लेते हुए उसे वापस यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ने लगा। वेद जानता था कि अगर अभी उसने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो कल को वो लड़की जरूर शिवांशा को परेशान करेगी। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर वेद कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था। बस यही सोचकर वो वापस यूनिवर्सिटी जा रहा था। वहीं वेद को दोबारा यूनिवर्सिटी की तरफ गाड़ी मोड़ते देखकर शिवांशा ने घबराई आवाज में कहा, आप गाड़ी वापस क्यों मोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं शिवांशा भी वेद के इस तरह गाड़ी वापस यूनिवर्सिटी लेने का कारण समझती थी। उसने वेद को समझाते हुए कहा, आपको काम होगा, पहले ही आप अपना काम छोड़कर मुझे लेने के लिए आए हैं, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। और ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि तुम चीज़ों को कैसे संभालती हो? अब चुप करके बैठो, वरना यहीं बीच रास्ते में उतार दूंगा, वेद ने सख्त आवाज में कहा। शिवांशा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि वेद ने उसकी तरफ ठंडी निगाहों से देखा तो शिवांशा के शब्द उसके गले में अटक गए थे। अब आप मुझे डरा रहे हो, शिवांशा ने दूसरी तरफ चेहरा करके कहा। बिल्कुल डरा रहा हूँ, खुद कुछ करती नहीं हो और मुझे कुछ करने नहीं देती हो, इस दुनिया में तुम्हें परेशान करने का हक मैं किसी को नहीं देता हूँ, वेद ने सख्त आवाज में कहा। और आप जो मुझे परेशान करते हो उसका क्या, शिवांशा के मुंह से निकला, हालांकि बोलने के बाद उसे अपने शब्दों पर अफसोस भी हो रहा था। वेद कितना भी सख्त क्यों न रहे, पर उसके इरादे शिवांशा को प्रोटेक्ट करने के ही थे। उसका हक तुमने खुद मुझे दिया है, वेद ने इस बार शांत लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर नाराज होने के बजाय वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था। शिवांशा अब वेद से बहस करने के बजाय चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो वेद को रोक नहीं सकती थी, पर वापस यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे अजीब भी लग रहा था। अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए शिवांशा ने वेद की तरफ देखा और प्लीडिंग वॉइस में कहा, मेरी क्या इमेज रह जाएगी, आप खुद सोचिए, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें यही लगेगा कि एक दिन भी मैं खुद के दम पर स्टैंड नहीं कर पाई और छोटा सा कुछ होते ही बच्चों की तरह शिकायत लगाते हुए अपने पति को साथ लेकर पहुंच गई। ऊपर से मेरी तो शिकायत भी बेवजह है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। वे क्या सोचते हैं ये सोचना मेरा काम नहीं है, रही बात अपने पति को साथ लाने की, तो उन्हें भी तो पता चले कि तुम्हारा पति कौन है और उसके होते हुए वे तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वेद ने सिर हिलाकर जवाब दिया। शिवांशा हर तरह से वेद को समझा कर थक गई थी, लेकिन वो उसके सुनने को तैयार नहीं था। उसके आगे हार मानकर शिवांशा ही चुप करके बैठ गई थी। वेद भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। वो मन ही मन बोला, अब मैं इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं कि हर इंसान इसकी तरह साफ दिल का नहीं होता है। उस लड़की ने जानबूझकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने बैकग्राउंड का डिस्कशन किया था कि कल को कुछ हो भी तो कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। ये क्या चाहती है कि मैं इस बात का इंतजार करूं कि पहले वो इसके साथ कुछ करे और फिर मैं कोई एक्शन लूं? पता नहीं कब समझदार होगी ये। ड्राइव करते हुए वेद ने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। उनकी नज़रें आपस में टकराएं तो शिवांशा अभी भी आंखों ही आंखों में उसे इस मामले में कुछ न करने का कह रही थी। वेद ने तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और उसे अपनी नज़रें फेर ली थीं। कुछ ही देर में वो यूनिवर्सिटी के आगे खड़े हुए थे। शिवांशा को बाहर निकलते हुए बहुत अजीब लग रहा था। उसने वेद की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, आपको जहां जाना है जाइए, मुझे नहीं आना आपके साथ। अच्छा, और तुम्हें किसने कहा कि यहां तुम्हारे पास चॉइस है? चुपचाप बाहर निकलो, वरना पूरी यूनिवर्सिटी के सामने गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा। और सोच लेना कि कौन सा मोमेंट तुम्हारे लिए ज्यादा एम्बेरेसिंग होने वाला है, अपने पति के साथ कैजुअली यूनिवर्सिटी आना या फिर उसकी बाहों में प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना, वेद ने शिवांशा को धमकी दी। शिवांशा आंखें फाड़कर वेद की तरफ देखने लगी। उसे वेद से इस तरह की धमकी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्लीज मत कीजिए, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, एक बात ही मानने के लिए कह रही हूँ, शिवांशा ने वेद का हाथ पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। जब पता है कि मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती हूँ तो फिर बात मानने को कह ही क्यों रही हो, वेद ने सिर हिलाकर जवाब दिया और गाड़ी से बाहर उतर गया था। शिवांशा मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि वेद उसकी बात मान ले, लेकिन वेद गाड़ी की दूसरी तरफ आया और उसने दरवाजा खोलकर शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच लिया था। अब उसके पास पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं था। इस दौरान कृतिका, जीवा और रूहानी एक साथ थीं, जो घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में आई थी। जब उन्होंने वेद को दोबारा यूनिवर्सिटी के बाहर देखा तो वे वहीं पर रुक गई थी। उनके साथ शिवांशा भी थी। वेद ने शिवांशा के हाथ को थाम रखा था। वो उसका हाथ पकड़कर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। ये लोग वापस क्यों आए होंगे और मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कृतिका ने हल्का घबरा कर कहा और जीवा की तरफ देखा। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई और कारण हो सकता है, जीवा ने जवाब दिया। हालांकि उसका जवाब जितना बेपरवाह था उतना ही उसका चेहरा गंभीर था। वो भी यही सोच रही थी कि आखिर वेद शिवांशा को लेकर वापस कॉलेज क्यों आया हुआ है। कृतिका की तरह रूहानी भी घबरा गई थी। मुझे लगता है तुम दोनों को इस लड़की के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, ये काफी पावरफुल बैकग्राउंड से है, अगर थोड़ा भी कुछ हुआ तो तुम्हारे पुराने मामले भी सामने आ सकते हैं, रूहानी ने उन्हें सचेत करने की कोशिश की। हाँ ये सही कह रही है, कृतिका जल्दी से बोली। पहली बार वो रूहानी की किसी बात से सहमत थी। वहीं उन दोनों को इस तरह डरते घबराते देखकर जीवा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर तुम दोनों का डरना हो गया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। जीवा मित्तल कभी अपने टारगेट को चेंज नहीं करती है और अगर इस लड़की ने मेरे खिलाफ कुछ स्टेप लिया तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। कृतिका और रूहानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जीवा अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। जीवा कुछ भी करे लेकिन वे दोनों शिवांशा के साथ कुछ गलत करके अपना फ्यूचर खतरे में नहीं डाल सकती थी। मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी मेरी बस का टाइम हो रहा है, रूहानी ने बात को टालते हुए कहा। हाँ कल मिलते हैं, मुझे भी मॉम के कॉल आ रहे हैं, कृतिका ने बहाना बनाया। वे दोनों वहां से जाना चाहती थी पर जीवा ने उन दोनों के हाथ को पकड़ लिया था। जीवा ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, कृतिका तुम्हारी मॉम से मैं बात कर लूंगी और रूहानी तुम्हें बस के जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी, जब तक वे दोनों बाहर नहीं आ जाते तुम दोनों मेरे साथ यहीं रुको। जीवा की बात वे दोनों वैसे भी नहीं डाल पाती थी, फिर यहां तो मामला गंभीर था। मजबूरन रूहानी और कृतिका को वहां पर रुकना ही पड़ा। जीवा उन दोनों को साथ लेकर प्रिंसिपल ऑफिस के आगे बने वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। वहीं वेद शिवांशा को लेकर अंदर पहुंच गया था।
उनके प्रिंसिपल डॉक्टर मानवेंद्र व्यास ने जब वेद को देखा तो वे तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और वेद से हाथ मिलाया। मानवेंद्र अपनी जगह पर वापस बैठे और उन्होंने वेद और शिवांशा को बैठने का इशारा किया। आई होप हमने आपको निराश नहीं किया मिस्टर चौहान, मानवेंद्र जी ने कहा और शिवांशा की तरफ देखकर आगे पूछा, आपका आज का दिन कैसा रहा मिसेस चौहान? आप प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाइए सर, मुझे अजीब लग रहा है, शिवांशा ने हिचकिचाती आवाज में कहा। आप बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह बात कर रही हैं, लेकिन मिस्टर चौहान जो इस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं उसके बाद मैं खुद को आपको रिस्पेक्ट देने से रोक नहीं पाया, मानवेंद्र ने हंसकर कहा। शिवांशा इस मामले में कुछ नहीं जानती थी इसीलिए वो बस चुपचाप बैठी थी। शिवांशा से बात करने के बाद मानवेंद्र ने वेद का रुख किया। वेद के चेहरे के भाव गंभीर थे जो ये जाहिर करने के लिए काफी थे कि वो सिर्फ हालचाल पूछने या शिवांशा को कॉलेज से पिक करने के लिए नहीं आया था। कुछ हुआ है मिस्टर चौहान? मानवेंद्र ने गंभीर स्वर में पूछा। अभी तक नहीं हुआ है लेकिन मैं कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता मिस्टर व्यास, वेद ने सख्त आवाज में कहा। आगे बोलने से पहले वेद ने शिवांशा की तरफ देखा जो नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। वेद ने जिस तरह से शिवांशा की तरफ देखा था उससे मानवेंद्र समझ गए थे कि वो मामला जरूर शिवांशा से जुड़ा हुआ था। उनके कुछ पूछने से पहले ही वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, उस मामले का क्या हुआ जब पिछले साल कॉलेज हॉस्टल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, कुछ सामने आया? उसके सुसाइड नोट में यही लिखा हुआ था कि वो स्टडीज को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज्ड है, मानवेंद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इसी के साथ वेद के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो बोला, तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट टॉपर जिसने इस कॉलेज को पढ़ने के लिए चुना था वो स्टडी से प्रेशराइज्ड हो गई? मुझे ये किसी मजाक से कम नहीं लग रहा है। उस लड़की से मैं पर्सनली मिला था और इतनी कम उम्र में वो कॉन्फिडेंस खुद मेरे अंदर भी नहीं था, पर कोई सबूत भी सामने नहीं आए हैं। समझ नहीं आ रहा आज आप अचानक ही मामला फिर क्यों उठा रहे हैं, मानवेंद्र ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। ऐसा नहीं था कि वेद ने पहले इस मामले के बारे में पूछा नहीं था, पर लंबे वक्त बाद फिर से इस मामले के बारे में बात करना उसे थोड़ा अजीब लगा जबकि वो केस कब का बंद हो चुका था। न्यू सेशन शुरू हो गया है, रैगिंग जैसी हरकतें तो आम होती हैं और मैं नहीं चाहता वापस ऐसा कुछ हो, खासकर उस स्थिति में जब मेरी वाइफ यहाँ पढ़ रही है, वेद बोला। मानवेंद्र काफी अनुभवी था और वो वेद के कहने का इशारा अच्छे से समझ सकता था। उसने तुरंत शिवांशा की तरफ देखा और हैरत भरे लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है बेटा? देखो जो भी हुआ है वो खुलकर बताओ और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम उस स्टूडेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप गलत समझ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शिवांशा ने जल्दी से जवाब दिया। शिवांशा के साथ कुछ नहीं हुआ था तो फिर वेद वहां क्यों बैठा था, ये मानवेंद्र को समझ नहीं आया। उसने उलझन भरी निगाहों से वेद की तरफ देखा। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डोंट वरी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि आगे भी ना हो। मैं पर्सनली खुद इस जगह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो। ऊपर से आज तो शिवांशा के कुछ नए फ्रेंड्स भी बने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वे उसका पूरा ख्याल रखेंगे, वेद ने हल्के लहजे में जवाब दिया। उसने काफी स्मार्टली अपने दिल का डर भी रख दिया था और किसी का नाम भी नहीं लिया था। अचानक वेद का लहजा हल्का होते ही मानवेंद्र हल्का सा हंसा। फिर तो मैं आपके नए फ्रेंड्स को देखना चाहूंगा, मानवेंद्र ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें यहाँ बुलाएं। क्या नाम था उसका? जीवा मित्तल। हाँ, यही नाम था, वेद बोला। अच्छा, जीवा मित्तल। उसके ग्रुप में तीन लड़कियां हैं और एक लड़की काफी इंटेलिजेंट भी है। मैं उन्हें अभी यहाँ बुला लेता हूँ, मानवेंद्र ने जवाब दिया और तुरंत बेल बजाकर पियोन को बुलाया। उन्होंने पियोन को कहकर जीवा, कृतिका और रूहानी को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया था। ऑफिस से बाहर आते ही उसकी नजर बाहर खड़ी उन तीनों लड़कियों पर गई। वे सब थर्ड ईयर स्टूडेंट थी, इस वजह से वो उन्हें पहले से जानता था। अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गई, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है, पियोन उन्हें देखते ही बोला। अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया था, जबकि उसके जाते ही जीवा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं। वे लोग पूरी बात नहीं जानती थीं, फिर भी उन्हें यही लग रहा था कि इसके पीछे शिवांशा का हाथ है, जिसने पहले दिन ही वहां आते ही उनकी कंप्लेंट कर दी थी। अब मैं इस लड़की को किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ, या तो ये खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाएगी या ये दुनिया, जीवा ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा और फिर अपने कदम प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ाने लगी। कृतिका और रूहानी जानती थीं कि जीवा के शब्द कोरी धमकी नहीं है, लेकिन इस बार बात अलग थी। सामने वेद सिंह चौहान खड़ा था, फिर भी जीवा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आई होप आपको कहानी में ये छोटा सा नया ट्रैक पसंद आया होगा। बाकी आज का पूरा पाठ वेद और शिवांशा पर था। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज पढ़कर समीक्षा कीजिएगा और गैप के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ा बिजी चल रही थी इस वजह से नहीं लिख पाई।